असाध्य वीणा पृष्ठभूमि और काव्यार्थ। असाध्य वीणा की रचना अल्मोड़ा यानी उत्तराखंड के गृह प्रांतर में ही 18-20 जून 1961 के दौरान हुई थी। जिस दृश्य स्वर गंधमय कांतार के बीचों बीच कवि का निवास था, उससे अधिक उपयुक्त और सुसंवादी परिवेश इस काव्य की सर्जना के लिए भला और क्या हो सकता था। इस सुंदर संयोग के फलस्वरूप जहाँ एक ओर काव्य ने परिवेश की जीवंत छाप ग्रहण की है, वहीं दूसरी ओर उस परिवेश के अभ्यस्त आँख कानों के लिए अपना ही संचित अनुभव एक सर्वथा नई ताजगी और नया उन्मेष ग्रहण कर लेता है। चौंके खग श्रावक की चिहुक, शिलाओं को दुलराते वन झरनों के द्रुत लहरीले जल का कल निनाद, कोहरे में छनकर आती पर्वती गांव के उत्सव ढोलक की थाप, गड़रिये की अनमनी बांसुरी, कठफोड़े का ठेका फुल सुंघने की आतुर फुरकन, चीड़ वनों में गंध अंध उन्मत पतंग की जहां तहां टकराहट, ये और ऐसे अनेक सारे बिंब असाध्य वीणा के कवि की अनुभव समृद्धि, संवेदनशीलता एवं सूक्ष्म पर्यवेक्षण क्षमता को झलकाते हैं। प्रियंबद केश कंबली द्वारा किरीटी तरु की समस्त अनुभव संपदा का स्मरण आवाहन, जहां एक ओर कवि को अपनी विस्तृत और विविध जीवनानुभूतियों के एकाग्र प्रत्यवलोकन का अवसर प्रदान करता है, वहीं वह उसे उन अनुभवों को एक ऐसे सारभूत निर्वैयक्तिक अर्थ तक उठाने की प्रेरणा भी देता है जो न केवल सर्वोच्च काव्यार्थ है बल्कि सृष्टि और सृष्टा का रहस्यार्थ यानी आध्यात्मिक मर्म भी। प्रकृति के साथ भारतीय मन का रिश्ता परंपरा से ही अत्यंत रागात्मक रहा है और वह रागबंध पश्चिमी कवियों की तुलना में न केवल अधिक तादात्म्य प्रेरित रहा है बल्कि एक प्रभावित पावनता के धार्मिक बोध को जगाने वाला भी। वैदिक कवि सृष्टि को ही परमात्मा के काव्य के रूप में अनुभव करता है, तभी तो वह कह उठता है देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। कोष्ठक में देवता के इस काव्य को देखो जो जरा व्याधि से परे नित्य नवीन और अमर है। मानव कवि इस तरह उस दिव्य अपार्थिव कवि का ही अनुकरण करने को प्रेरित होता है, वह भी अपरा प्रकृति के रूपों के पीछे उस अरूप अगोचर परा प्रकृति के ध्यान एवं साक्षात्कार में प्रवृत्त होता है जो इस जगत को और जीव मात्र को धारण करती है और परम आत्मा या परब्रह्म की सृजन शक्ति है। असाध्य वीणा की रचना से कुछ ही माह पूर्व कवि ने चक्रांत शिला की कविताएं रची थीं, जिसकी पहली ही कविता में हम कवि को ऊपर छाए असीम महाशून्य और नीचे बहती महामौन की सरिता के बीच अवस्थित अपनी आत्मा में अनायास खुलते प्रतीकों का मनन करते देखते हैं। रूपों में एक अरूप सदा खिलता है, गोचर में एक अगोचर अप्रमेय, अनुभव में एक अतीन्द्रिय, पुरुषों के हर वैभव में ओझल अपौरुषेय मिलता है। चक्रांत शिला की यही पहली कविता एक तरह से देखा जाए तो असाध्य वीणा के पूर्वाभास या पूर्व राग की तरह पढ़ी जा सकती है। कविता का समापन अग्रलिखित पंक्तियों से होता है, मैं मौन मुखर सब छंदों में उस एक अनिर्वच्छंद मुक्त को गाता हूँ। देखा जाए तो चक्रांत शिला का यह अंत ही असाध्य वीणा का आरंभ है। चक्रांत शिला में चिरंतन मनन के स्तर पर गाने की बात है, जबकि असाध्य वीणा स्वयं गायन है। वहां कवि स्वयं गाने की बात करता है, जबकि यहाँ वीणा स्वयं अर्थात किरीटी तरु स्वयं गा उठता है। किरीटी तरु का स्मरण आवाहन और ध्यान प्रियंवद केश कंबली के लिए स्वयं उस अनिर्वत छंद मुक्त का ही ध्यान है, इसलिए कि किरीटी तरु समस्त छंदों स्वरों और लय गतियों का भोक्ता और साक्षी दोनों रहा है, इसलिए कि वह देश काल में अपनी संभावनाओं की चरम परिणति को पहुंच कर ही एक देश कालातीत सत्य का दृष्टा पद प्राप्त कर चुका है। उसी के अंतरंग से निर्मित वीणा उसके समस्त संचित अनुभवों का सार सर्वस्व है, जिसमें वीणा बजाने वाले की तपस्या भी जुड़ गई है। कुछ इस तरह कि वीणा में संचित अंतर्निहित संगीत लौकिक और अलौकिक का, काल और कालातीत का एक ऐसा अविच्छेद्य यौगिक बन चुका है जिस तक पहुँचना साधारण संगीतज्ञ के बस की बात नहीं, इसलिए कि वह लोकविद्ध और लोक सिद्ध होते हुए भी अलौकिक की भूमिका को स्पर्श करने वाला संगीत है। उसके पीछे केवल चराचर का भोगा हुआ अनुभव ही नहीं, चराचर के साथ एकात्मकता सिद्ध करने वाली साधना और तपस्या का बल भी जुड़ा हुआ है। आज के वैज्ञानिक और बुद्धिवादी युग में जब अलौकिक शक्तियों पर पौराणिक प्रतीकों पर विश्वास करना कठिन हो गया है, कवि अपनी अनुभूति के मर्म को उसके रहस्य को कैसे अभिव्यक्त करे, यह एक विकट समस्या है। तब तो और भी, जब वह स्वयं इस बात को जानता और स्वीकारता है कि देवता उन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। ऐसे में कवि को नए प्रतीक खोजने पड़ते हैं, एक नई संवेदना विकसित करनी होती है, शब्दों और शब्दांतरालों के सर्वथा नवीन संयोजन ढूंढने पड़ते हैं ताकि क्षरित अर्थ को फिर से भाषा में लौटाया जा सके। असाध्य वीणा उस तरह न तो एक विशिष्ट मनस्थिति या अनुभूति को तीव्रता और त्वरा के साथ व्यक्त करने वाली गीति धर्मा कविता है, न उसे खंड काव्यों के साथ बिठाया जा सकता है। कविता के नाटकीय आरंभ पर ही गौर करें, बिना किसी औपचारिक और विलंबित भूमिका के कथा का नायक और केंद्रीय विषय वस्तु दोनों पाठक को कितने क्षिप्र गति से प्रत्यक्ष कर दिए गए हैं। वीणा निर्माण की समूची कथा कुछ ही पंक्तियों में प्रियंवत को बता दी जाती है। थोड़ा रुक कर राजा फिर उतने ही संक्षेप में प्रियंवत से अपनी अपेक्षा का स्वरूप भी स्पष्ट कर देते हैं, अपेक्षा ही नहीं यह विश्वास भी कि वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। राजा को विश्वास है कि वह सच्चा स्वर सिद्ध प्रियंवत केश कंबली ही हो सकता है। उसके इस विश्वास का आधार क्या है? सच्चे स्वर सिद्ध की उसकी कल्पना क्या है? क्या उच्च कोटि का कला कौशल और अभ्यास? मगर यह तो पहले ही कह चुका है कि मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारथ दर्प चूर, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका, अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई। स्पष्ट ही इस असाध्य वीणा को साधने के लिए स्वर ज्ञान और स्वर सिद्धि पर्याप्त नहीं है, एक दूसरे स्तर की प्रतिभा इसके लिए चाहिए जो प्रतिभा के सामान्य लोक प्रचलित मानदंडों से परे है। क्या है वह प्रतिभा? क्या राजा को इसका अनुमान है? लगता है प्रियंवत पर अपनी सारी श्रद्धा और विश्वास के बावजूद राजा उसे केवल एक और कलावंत, निश्चय ही श्रेष्ठतर कलावंत ही मान रहा है। तभी तो प्रियंवत आरंभ से उस निर्भ्रांत कर देना जरूरी समझता है। धीरे बोला, राजन पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी। कर्तापन का अहिमान नहीं बल्कि साक्षी बनने की नम्र भूमिका, अपनी साधना का अहंकार नहीं बल्कि अपने साध्य की महिमा के सम्मुख अपनी अकिंचनता और निमित्त मात्रता का स्वीकार, यही वह चीज है जो प्रियंवत केश कमली को अन्य कलावंतों से अलग करती है। कविता का आधार रूपक संगीत है, किंतु वह सत्य जो उस रूपक के जरिए व्यक्त किया गया है वह समस्त कलाओं और विद्याओं पर अभिव्यक्ति मात्र पर लागू होता है। वह सत्य यही है कि सारी कला साधना का रहस्य और सिद्धि इसी अनकहे सत्य का साक्षी बन पाने में निहित है, और यह साक्षित्व तो वही पा सकता है जो अपने को सब कुछ को सौंप दे सकता है। प्रियंवद केश कम्बली की तरह कह सकता है, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था, सुना आपने जो वह मेरा नहीं न वीणा का था, वह तो सब कुछ की ही तत्ता थी, महाशून्य वह महामौन जो शब्दहीन सब में गाता है। किंतु यह अपने को सब कुछ की तत्ता को सौंप देना ही तो सबसे कठिन होता है। प्रियंवत के उस पहले कथन और इस अंतिम कथन के बीच ही तो इस कथा का सारा काव्य मर्म उद्घाटित होता है। अपने को सब कुछ की तत्ता को सौंपने का क्या मतलब है? उस सौंपने की प्रक्रिया क्या होती है? परिणति क्या होती है? रचनाकार और उसके गृहीता समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? यही तो हम जानना चाहते हैं। सब कुछ की तत्ता तो एक दार्शनिक सूत्र है, किंतु प्रियंवत केश कम्बली दार्शनिक नहीं है, सूत्रकार नहीं है। इस कविता यानी कथा का राजा और उसकी सारी सभा उससे दर्शन नहीं मांग रही है, उपदेश नहीं चाह रही है, वह तो उससे संगीत की मांग कर रही है, उस संगीत की जो मनुष्य की समस्त कलाओं का गंतव्य और शीर्ष बिंदु है। कोष्टक में ऑल आर्ट्स स्पायर टू द कंडीशन ऑफ म्यूजिक, कोष्टक बंद, उस संगीत की जो दर्शन को अनुभूति में घुला दे, हमारी सबकी अलग अलग जीवनानुभूति की शब्दावली में हमें उस सर्वोच्च जीवन सत्य का साक्षात्कार करा दे, उसे हमारे जीवन अनुभव का विषय बना दे, तभी तो हम अपने साक्षात अनुभव के आधार पर उसके सूत्र को ग्रहण करने, मान लेने को प्रस्तुत होंगे। क्या प्रियंवत ने सचमुच हमें स्वीकार के लिए भीतर से तैयार किया है? हम फिर उसी स्थान पर लौटें जहां प्रियंवत ने राजा की चुनौती, असाध्य वीणा को साधने की चुनौती, नितांत नम्र और निःस्पृह आत्मविश्वास के साथ स्वीकार की थी। इस आत्मविश्वास का स्रोत प्रियंवत के अहम भाव में नहीं है, वह तो अहम के विलयन में है जो अज्ञेय के जीवन दर्शन और रचना दर्शन का केंद्रीय सूत्र रहा है, किंतु विलयन की सार्थकता भी उसी अहम की, उसी व्यक्तित्व की है जो वास्तव में व्यक्तित्व हो, जो व्यक्तित्व बना ही नहीं, अपनी संपूर्ण संभावनाओं के साथ अस्तित्व के वृक्ष पर खिला नहीं, उसके विलयन की क्या सार्थकता है? वह तो नैवेद्य बना ही नहीं, सृष्टि में अपना पद उसने पाया ही नहीं। विराट ने सबको अपना अपना आत्मकेंद्र देकर सृष्टि में भेजा है। पूर्ण विकसित व्यक्तित्व की भेंट ही उसे चाहिए। कवि या कलाकार भी आखिर क्यों रचता है? कवि व्यक्तित्व के यानी सीमित नहीं संपृक्त व्यक्तित्व के आत्मदान की प्रक्रिया ही तो कविता है। सामान्यतः व्यक्ति अपने अहम को उद्दीप्त करने के लिए कर्म में प्रवृत्त होता है, वही उसके लिए उसकी पहचान है। दूसरों की आंखों में बड़ा दिखना, सफलता के लोक प्रचलित मानदंडों के मुताबिक अपने व्यक्तित्व को ढालना, किंतु कवि के लिए आत्मा की अनुभूति उसी क्षण में सबसे उत्कट होती है जिस क्षण में वह अपने अहम की सीमाओं को टूटते पिघलते अनुभव करता है। वह क्षण एक साथ आत्मविस्मृति का और आत्म साक्षात्कार का क्षण होता है। इसलिए क्यों क्षण कवि या संगीतकार को अपने पृथक व्यक्तित्व की चेतना नहीं रह जाती, अपने कौशल का भी एहसास भी नहीं रह जाता। वह एक पारदर्शी माध्यम भर बन जाता है निर्वैयक्तिक अनुभूति को सत्य को धारण करने का। यह कोई रहस्यवाद नहीं है। प्रत्येक काल की रचना प्रक्रिया का और विशेष रूप से आधुनिक युग की रचना प्रक्रिया का सत्य है। विशेष रूप से इसलिए कि आधुनिक युग में इस पारदर्शी चेतना की उपलब्धि सबसे अधिक दुस्साध्य है। परंपरागत विश्वासों के सहारे से वंचित आधुनिक बुद्धि के लिए आत्मसमर्पण ही सबसे बड़ी समस्या है। आत्मसमर्पण उसी को तो किया जा सकता है जिस पर आस्था हो। आस्था अपने आप में एक जटिल प्रश्न है। बरसों पहले इत्यलम में कवि अज्ञेय ने लिखा था, मैं भी एक प्रवाह में हूँ, लेकिन मेरा रहस्यवाद ईश्वर की ओर उन्मुख नहीं है। मैं उस असीम शक्ति से संबंध जोड़ना चाहता हूँ, अभिभूत होना चाहता हूँ जो मेरे भीतर है। असाध्य वीणा में एक अधिक गहरे और परिपक्व धरातल पर हम उसी असीम शक्ति से संबंध जोड़ने और उससे अभिभूत होने की प्रक्रिया को पहचानते और अनुभव करते हैं। इत्यलम का युवा कवि जिस सत्य का आभास अभिप्सा के स्तर पर पा रहा है, असाध्य वीणा का कवि उसे चरितार्थ करने की ओर अग्रसर दीख पड़ता है। प्रक्रियागत उन्मोचन की यह साधना है बहुत आगे तक। असाध्य वीणा की रचना के बाद ही पूरे 25 वर्षों तक कवि के तिरोभाव पर्यंत चलती जानी है, किंतु यहाँ उसका विचार प्रासंगिक नहीं है। यहाँ हम असाध्य वीणा को कवि की काव्य यात्रा के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव पर बल्कि उसके मध्यवर्ती रचनाकाल की प्रौढ़ निष्पत्ति के रूप में पहचाने, यही अभिष्ट है। विराट के सम्मुख प्रियंवत केशकम्बली के आत्मनिवेदन की प्रक्रिया का एक रूप वह भी है जिसे हमने बावरा अहेरी में संकलित अज्ञेय की एक प्रसिद्ध कविता आज तुम शब्द न दो में पहचाना था। उस कविता में कवि सीधे प्रथम पुरुष में विराट को संबोधित करता हुआ कहता है, आज नहीं कल सही, कल नहीं युग युग बाद ही, मेरा तो नहीं है यह चाहे वह मेरी असमर्थता से बंधा हो। मेरा यह भाव यंत्र एक मचिया है सूखी घास फूस की, उसमें छिपेगा नहीं औघड़ तुम्हारा दान, साध्य नहीं मुझसे किसी से चाहे सदा हो। अपने भाव यंत्र द्वारा विराट की अभिव्यक्ति की असाध्यता का अनुभव हम देख सकते हैं, पहले भी कवि को हुआ है और असाध्य वीणा उस अनुभव के ही उत्तरोत्तर परिपाक का परिणाम है। हमने कवि व्यक्तित्व की जिस पारदर्शिता की बात ऊपर कही थी उसकी भी पूर्व सूचना उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ हमें देती हैं। भावयंत्र भी जीवन के अनकहे सत्य की ही तरह कोई निजी संपत्ति नहीं है तथाकथित कवि व्यक्तित्व की। उसकी एक निर्वैयक्तिक सत्ता है जिसका किसी व्यक्ति से जोड़ना एक संयोग भर है। मेरा तो नहीं है चाह यह चाहे वह मेरी असमर्थता से बंधा हो। इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि कवि अपने को एक माध्यम भर मानना चाहता है। वह मुक्तिदायी काव्य सृजना की आशा यदि कर रहा है तो अपने सीमित अहम के बलबूते पर नहीं कर रहा है। अपनी रचना को, अपने आत्मदान को भी वह औघड़ तुम्हारा दान कहकर ही स्वीकार करना चाहता है ताकि कवि होने का कर्तृत्व का अभिमान उसे न ग्रस ले। अपनी अकिंचनता की अस्वीकृति ही कवि को आगे जाकर आंगन के पार द्वार तक आते आते यह कहने की सामर्थ्य जुटाती है कि कहीं बड़े गहरे में स्वैर हैं सभी नियम, सभी सर्जन केवल आचर पसार कर लेना। इसी तरह इसी संग्रह की एक दूसरी अत्यंत मार्मिक कविता भी इसी निष्पत्ति तक पहुंचती है कि चिड़िया चिड़िया नहीं रही है तब से, मैं भी नहीं रहा, मैं कवि हूँ, कहना सब सुनना है, स्वर केवल सन्नाटा। असाध्य वीणा के संगीत से उसके स्पंदित सन्नाटे से उपरोक्त कविताओं का कितना और कैसा संबंध है यह देख पाना अज्ञेय काव्य के सजग पाठकों के लिए कठिन नहीं होना चाहिए। पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा, नहीं स्वयं अपने को शोध रहा था, सघन निबड़े में वह अपने को सौंप रहा था उसी किरीटी तरु को, कौन बजावे यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही। प्रियंबद किरीटी तरु को ध्यान में निमग्न हो जाता है। यह ध्यान आवाहन है, स्मृति साक्षात है किरीटी तरु का। महान कला मर्मज्ञ आनंद कुमार स्वामी ने दिखलाया है कि प्राचीन भारत का कलाकार जब मूर्ति बनाता था तो अपनी प्रेरणा ध्यान प्रक्रिया से ही प्राप्त करता था। ध्यान में ही वह मूर्ति उसे प्रत्यक्ष होती थी, जिसके आगे वह आत्मनिवेदन करता था, जिससे वह तादात्म्य साधता था। तभी रूप का शिल्पन संभव होता था। प्रियंबद भी वही कर रहा है। तरु को उसका संबोधन एक नीरव एक आलाप है, किंतु कितना गीत्यात्मक। वीणा तो इस आवाहन के बाद बहुत बात छेड़ी जाती है, किंतु सच पूछा जाए तो संगीत का आरंभ यहीं से हो जाता है। पाठक को वह संगीत सुनाई देने लगता है इस तरु स्तवन के आरंभ से। ओ विशाल तरु, शत सहस्र पल्लवन पतझरों ने जिसका नित रूप संवारा, कितनी बरसातों कितने खद्योतों ने आरती उतारी, दिन भौरे कर गए गुंजरित रातों को झिल्ली ने अनथक मंगल गान सुनाए। झिल्ली के मंगल गान अज्ञेय की ही एक पहले की कविता के पंक्ति के मन में कौंध गई है। झिल्ली का अविरत उल्लास देता है संकेत, कहीं क्या उसे मृत्यु है कितनी पास। यह कैसा संगीत है, कैसा जीवनानुभव है जो मृत्यु की आहट को ही मंगल गान में परिणत कर देता है। न कुछ अस्तित्ववादी आतंक को भी सब कुछ के स्वीकार में बदल देता है। क्यों न हो किरीटी तरु का यह संचित संगीत कोई साधारण संगीत थोड़े ही है। क्या यह वह संगीत है जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। प्रियंवद अपने को विरोधाभास के सम्मुख पाता है। वीणा उसकी गोद में रखी है, किंतु उसकी अनुभूति इसके एकदम विपरीत है। वह स्वयं उस तरुतात की गोदी में बैठा हुआ बालक है। बालक समान ही वह मचल उठता है, तू गा तू गा तू गा, मानो उसके बाल हट से विवश होकर ही किरीटी तरु गा उठता है। हाँ मुझे स्मरण है, बंदली कौंध पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना। हाँ मुझे स्मरण है, प्रियंवद के नीरव एकालाप के भीतर सहसा यह कौन बोलने लगा है, क्या स्वयं किरीटी तरु, या तरु के साथ तादात्म सिद्धि के बल पर तरु के भीतर प्रकाय प्रवेश कर चुका प्रियंवद स्वयं। कोई पांच बार हाँ मुझे स्मरण है कि आवृत्ति हुई है, और हर आवृत्ति के साथ एक नई बिंबमाला अवतरित होती है। पहले स्मरण में पक्षी जगत के विशिष्ट बिंबों की बहुतायत है, दूसरे में जल बिंबों की, तीसरे में ध्वनि बिंबों की, अर्थात वन पशुओं की नानाविध आतुर तृप्त पुकारों की, चौथे में दिन के विविध प्रहारों के दृश्य बिंबों की। तब इस आवाहन के चरम बिंदु पर तन्मयता और आत्मविस्मृति की पराकाष्ठा पर ही प्रियंबद का भाव यंत्र मानो उस औघड़दानी किरीटी तरु के स्पर्श से झंकृत हो उठता है। मैं नहीं, नहीं, मैं कहीं नहीं। ओ रे तरु, ओ वन, ओ स्वर संभार, नादमय संस्कृति यो रसप्लावन, अपने खगकुल को मुखरित कर, अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ी को ताल बांध, अपने छायातप दृष्टिपवन पल्लवन कुसुमन की लय पर, अपने जीवन संचय को कर छंद युक्त, अपनी प्रज्ञा को वाणी दे, तू गा तू गा। किरीटी तरु के साथ प्रियंबद के तादात्म का यह चरम बिंदु है, जिसके तुरंत बाद समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा, उंगलियां कांपी और वीणा जाग उठी, स्वर शिशु किलक उठे और अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू, जिसमें सोता है अखंड ब्रह्मा का मौन अशेष प्रभा में। यो यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा भज्याम्य हम, गीता की उक्ति है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, तुलसीदास ने कहलवाया है। सृष्टि में सबको अपना स्वाधीन आत्मकेंद्र स्वभाव मिला है, सबका अपना स्वधर्म है, उसी का पालन करते हुए उसी के माध्यम से मुक्ति मिलती है। प्रियंबद के निमित्त से अवतरित किरीटी तरु का स्वयंभू ब्रह्मा का संगीत सभा में उपस्थित विविध श्रोताओं को उनके अपने अपने स्वधर्म की संगति में, उनकी अपनी अपनी प्रवृत्ति और अहिंसा के मेल में ही व्याप्तता और भासता है, तो यह स्वाभाविक ही है। स्वयंभू संगीत सृजन का प्रतीक है, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं। यह कविता स्वयं सृजन प्रक्रिया और सृजन रहस्य के बारे में है। सृजन स्वतंत्र और स्वयंभू है, अपने उद्गम में, अपनी समूची प्रक्रिया में, अपनी निष्पत्ति तथा प्रभाव में भी। यह इस पूरी कविता के रचना विधान से स्पष्ट व्यंजित होता है, जिसका उद्गम ही स्वातंत्र में है, उसका प्रभाव भी स्वतंत्र करने वाला ही होगा। मानव की सृजनात्मक चेष्टा का सबसे बड़ा मूल्य ही है कि वह मनुष्य को उसकी संभावनाओं की सही सही पहचान कराती है, और इसी पहचान के आधार पर मनुष्यों को एक दूसरे से और मानवेतर सृष्टि से और अपने सृष्टा से ही जोड़ती है। सच्ची सृजना का प्रभाव वही होगा जो प्रियंवद के माध्यम से अवतरित संगीत का हुआ। यत्ता सबकी अलग अलग जागी, संगीत हुई पा गई विलय। अहम के विलयन का जो आदर्श कवि अज्ञेय ने बार बार अपनी सृजनात्मकता के सम्मुख रखा, जिसकी चर्चा हम ऊपर कर आए हैं, उसे यहाँ ही पहचाना जा सकता है। राजा के लिए राजमुकुट सहसा हल्का हो जाता है, उसके भीतर राजा का स्वधर्म और रघु जैसा आदर्श इस संगीत के प्रसाद से जाग उठता है, धर्म भाव से अपना सब कुछ निछावर कर देने का। रानी के भीतर अनन्य प्यार की साधना का सहज विश्वास जगता है। जहां तक सभा में उपस्थित प्रजा का प्रश्न है, यह संगीत उनके अपने अनुभववृत्त और संस्कार के मुताबिक ही उन्हें पकड़ता है। कवि ने यहाँ पर विविध प्रवृत्तियों और जीवन व्यापारों की बड़े ही प्रतिनिधिक चित्रमाला खड़ी कर दी है। बहुत पहले अपनी मैं वहाँ हूँ शीर्षक कविता में कवि ने लोक संप्रकृति का जैसा मार्मिक और सहज संवेद्य रूप खड़ा किया था, वैसा ही संश्लिष्ट प्रभाव असाध्य वीणा में भी उसने उत्पन्न किया है। बल्कि असाध्य वीणा की इमेजरी और भी अधिक सूक्ष्म और सांद्र है। यहाँ सामान्यकृत रूप नहीं बल्कि प्रत्येक ऐन्द्रिक बोध का सुस्पष्ट और सुसंवेद्य रूपाकार है, धारदार बनाता है। एक अपर को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया की, एक तीसरे को मंडी की ठेलम ठेल ग्राहकों की आस्पर्धा भरी बोलियां, चौथे को मंदिर की ताल युक्त घंटा ध्वनि, और पांचवे को लोहे पर सधे हथौड़े की समचोटें, और छठे को लंगर पर कसमसा रही नौका पर लहरों की अविराम थपक, बटिया पर चमरौधे की रुंधी चाप सातवें के लिए, और आठवें को कुलिया की कटी मेड़ से बहते जल की छुलछुल। अंत की ओर यह बिंबमाला जीवन और मृत्यु से सम्मिलित आस्वाद का घनीभूत अनुभव कराती हुई अपनी अनिवार्य निष्पत्ति पर पहुंचती है। इसी गमक नट्टीन की एड़ी के घुंघरों की उसे युद्ध का ढोल, इसे संझा गोधूली की लघु टुनटुन उसे प्रलय का डमरू नाद, इसको जीवन की पहली अंगड़ाई पर उसको महाजृंभ भी विकराल काल, सब डूबे तिरे झिपे जागे हो रहे वशंवद स्तब्ध, यत्ता सबकी अलग अलग जागी संधित हुई पा गई विलय, वीणा फिर मूक हो गई। कविता के आरंभ की जैसी नाटकीय लय में ही कविता का उद्यापन भी हुआ है। संगीत के उस उपलवनकारी प्रभाव से उभरते ही श्रोताओं की जय जयकार से सभा मंडप गूंज उठता है। राजा सिंहासन से उतरे, रानी ने अर्पित की सतलड़ी माल और जनता विह्वल कर उठी धन्य हे स्वर्जित धन्य धन्य। संगीतकार सर्जक भी अपने उस आत्मविस्मृत तन्मयता से उभरकर राजा और सभा के अभिनंदन के उत्तर में उठ खड़ा होता है। वीणा से उसके संबंध का एक और रूप यहाँ पर सामने आता है। कितना मार्मिक और अर्थवान बिंब है यह। गोदी में सोए शिशु को पालने डालकर मुग्धामा हट जाए दीठ से दुलरा थी। इस बिंब की तुलना प्रियंबद और वीणा के संबंध को दर्शाने वाले उस पहले बिंब से कर देखिए। यह वीणा मेरी गोद रखी है रखी रहे, पर मैं ही तो तेरी गोद बैठा बोध भरा बालक हूँ। कितना मार्मिक उलटफेर है यह और कितना वास्तविक है। क्या हर सर्जक एक साथ ही मोद भरा बालक और मुग्ध माँ एक साथ और बारी बारी से नहीं होता। प्रियंवत के वीणा वादन का समापन इस कविता का समापन नहीं है। यहाँ तक कि जब प्रियंवत सभा से विदा लेकर अपनी गेह गुफा को चला जाता है तब भी कविता पूरी नहीं होती। कविता पूरी होती है कवि के इस अत्यंत अर्थगर्भ संकेत के साथ कि उठ गई सभा, सब अपने अपने काम लगे, युग पलट गया। इन पंक्तियों के पश्चात एक छोटा सा अंतराल और सहसा समूची कथा से अलग छिटकी हुई इन पंक्तियों का स्वर, प्रिय पाठक यो मेरी वाणी भी मौन हुई। क्या ये पंक्तियां कथा प्रवाह में कोई विक्षेप उत्पन्न करती हैं? यह आवाज किसकी है जिसे संबोधित किया जा रहा है? यह प्रियंवत का श्रोता तो नहीं है, वह तो आज और अभी का पाठक है। वीणा तो पहले ही मूक हो चुकी थी, फिर यह किसकी वाणी है जो मौन हुई? प्रिय पाठक यो मेरी वाणी भी मौन हुई। यों के ध्वन्यर्थ पर ध्यान देना क्या आवश्यक नहीं लगता? जैसा कि सभी जानते हैं असाध्य वीणा एक जापानी कथा पर आधारित है। उस कथा का अभिप्राय अलग अलग संस्कृतियों के वृत्तों का अतिक्रमण करने वाला सार्वभौमिक सर्वव्यापी अभिप्राय है। इसीलिए कवि के चित्त को उसने छुआ और उसे अपनी तरह काव्य रूप में साक्षात करने की प्रेरणा दी। कथा पुरानी है और कालबद्ध दिखते हुए भी एक कालातीत आयाम में घटित होती है। अब यूं तो हमारे यहाँ इतिहास पुराण साथ चलते हैं और स्वयं इतिहास का ही व्युत्पत्ति मूलक अर्थ इति ह आस इति धन ह धन आस ऐसा होता आया है ही है। तो कहीं पाठक इसे एक पुराकथा यानी वर्तमान से असंबद्ध एक अतीत का घटित भर मानकर छुट्टी न पाले। इसलिए यह जरूरी है कि उस पुराण सत्य को पाठक अभी और आज के सत्य की तरह ही अपने साथ लेता जाए। वाणी और वीणा को अलग समझने की सुविधा उसे न मिले और वाणी भी कोई अमूर्त वाणी नहीं, स्वयं इस कविता के कवि की वाणी, कवि मात्र की आधुनिक कवि की वाणी। पूरी कविता में काल का जो कुशल निर्वाह मिलता है उसके साथ यह युक्ति सर्वथा समंजस है, क्योंकि वह भी काल के तर्क से ही समर्थित युक्ति है। मिथक न होते हुए भी यह कथा लगभग मिथक सरीखा प्रभाव छोड़ती है। मानव की स्वाधीनता और मानव की सृजनात्मकता ही कवि अज्ञेय की जीवनव्यापी काव्य साधना के केंद्रीय मूल्य और बुनियादी सरोकार रहे। और जैसा कि हमने देखा, असाध्य वीणा की रूपक कथा यदि उन्हें इतना आकर्षित कर सकी तो इसलिए कि वह इन्हीं मूल्यों के स्थापित करने वाली कथा है। मानव की सृजनशीलता आधुनिक युग में आस्था का सबसे बड़ा आधार है और इसके साथ कवि की संपृक्ति इतनी गहरी है कि असाध्य वीणा पढ़ते हुए या सुनते हुए कोष्ठक में प्रसंग वशात यहाँ इस बात पर जोर देना अत्यंत आवश्यक है कि इस कविता को पढ़ाने से पहले स्वयं कवि की आवाज़ में असाध्य वीणा को सुनना एक बहुत ही मूल्यवान और लाभदायी अनुभव होगा। ऐसी व्यवस्था कैसेट की ही जानी चाहिए। कोष्ठक बंद। असाध्य वीणा का काव्य पाठ सुनते हुए या पढ़ते हुए पाठक को कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि वह एक भिन्न जातीय संस्कृति की कथा है। वह उसे अपनी ही नितांत एतद्देशीय कथा लगती है। यह इसी कारण है कि उसमें जो सत्य व्यंजित हुआ है वह सार्वदेशिक और सार्वभौम है तथा स्वयं कवि की उसके साथ गहनतम संपृक्ति है। जैसा कि स्वयं अज्ञेय ने एक जगह लिखा है, उद्धरण चिन्ह, मिथक एक आदिम शक्ति का स्रोत है। कभी वह धर्म और मत संप्रदाय के काम में आता रहा और धर्म में आस्था न रहने पर भी संस्कृति के, समाज के और व्यक्ति के काम आ सकता है। उद्धरण चिन्ह बंद। यह भी कि उद्धरण चिन्ह, मिथक की सत्ता का और मिथक के निरंतर नया होकर सामने आने का कारण यह भी है कि संस्कृतियां उसके सहारे अपना नवीनीकरण करती चलती हैं। उद्धरण चिन्ह बंद। असाध्य वीणा के संदर्भ में अज्ञेय का यह मिथक चिंतन माननीय है और प्रासंगिक भी कविता को सही ग्रहण करने के लिए। पंडित विद्यानिवास मिश्र ने अज्ञेय की कविता के तीन चरणों की बात की थी। पहला विद्रोह और हताशा का, दूसरा अपने भीतर शक्ति संचय का और तीसरा बिना किसी आशा के आत्मदान में सार्थकता पाने का। असाध्य वीणा कहना न होगा कवि के विकास क्रम के इसी तीसरे चरण से संबद्ध रचना है। किंतु जैसा कि हमने अज्ञेय के प्रारंभिक दौर की एक कविता उद्धृत करते हुए देखा था, उस दौर में भी कवि के भीतर एक प्रकार की आस्थिक जीवन दृष्टि पाने की तड़प विद्यमान थी। निश्चय ही वह अपेक्षाकृत सरलीकृत आस्था थी जिसमें गुणात्मक समृद्धि उत्तरोत्तर आती गई। मैं वहां हूं शीर्षक कविता का उल्लेख हमने उपरोक्त विवेचना के सिलसिले में किया ही था। अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या नामक अपनी पुस्तक में डॉ. रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इस कविता के बारे में बिल्कुल सही लिखा है कि मैं वहां हूं में लोक संपृक्ति का जो रूप मिलता है उसका आधार आस्तिक जीवन दृष्टि है, यह मानना स्वाभाविक होगा। पूरी कविता में शक्ति का स्रोत मानवीय सृजनात्मकता है। इस सृजनात्मकता व्यक्तित्व को कवि ने उस कविता में जिस तरह सेतु के रूप में आका है, यह कहते हुए कि मैं सेतु हूँ, जो है और जो होगा दोनों को मिलाता हूँ, उस पर राम स्वरूप जी की टिप्पणी बहुत सटीक है, जिसे यहाँ उद्धृत करना असाध्य वीणा की विवेचना के संदर्भ में भी प्रासंगिक होगा। उनके कथानुसार उद्धरण चिन्ह है और होने के क्रम को सुसंबद्ध बनाए रखना सृजनात्मकता का मुख्य दायित्व है और अज्ञेय के उत्तरकालीन काव्य में या कि समूचे कृतित्व में ही समस्या प्रमुख है। ज्यों ज्यों सृजनात्मकता की प्रकृति को कवि ने समझा है, उसकी आस्था और आस्तिकता का रूप निखरता गया है। उद्धरण चिन्ह बंद। कहना न होगा कि यही सृजनात्मकता असाध्य वीणा में व्यक्त कवि की आस्था का मूल आधार और मूल स्वर है। निबंध समाप्त है। एक जापानी कथा, जिस जापानी कथा पे यह है उसके नीचे है कि डॉक्टर रामदर्श मिश्र ने अपनी पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता सृजनात्मक संदर्भ 1986 में असाध्य वीणा की अपनी विवेचना के आरंभ में ही उसकी आधार कथा का सार संक्षेप इस प्रकार दिया है। उद्धरण चिन्ह, यह कथा ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी में संग्रहित है। कथा का नाम है टेमिंग ऑफ द हार्प। इस कथा में वर्णित है कि किरी नाम के एक विशाल पवित्र वृक्ष से एक जादूगर ने एक वीणा बनाई। चीन के सम्राट ने इस वाद्य यंत्र को संभाल कर रखा था और वह चाहता था कि कोई उसे बजाए, पर कोई उसे बजा न सका। अंत में वीणाकारों के राजकुमार पीवो ने अपनी साधना द्वारा उसे बजाया। सम्राट ने उससे वीणा बजाने की सामर्थ्य का रहस्य पूछा तो उसने उत्तर दिया कि औरों को वीणा बजाने में सफलता इसलिए नहीं मिली कि वे सभी अपनी बात करते थे, जबकि मैंने वीणा में आए हुए संगीत को जगाया। अपने आप को भूल कर मैं स्वयं नहीं जान सका कि मैं वाद्य यंत्र हूँ या वाद्य यंत्र मैं। उद्धरण चिन्ह बंद समाप्त।